14 मई दिन मंगलवार, दिन भर मैं हूँ रेहान फजल। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी पर बोला जबरदस्त हमला।
पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, ये सब लोग जानते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है।
बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से, और उनसे पूछेंगे मायावती से गठबंधन की बात उनके जहन में आई कैसे।
कोई कंपल्शन नहीं है, बीजेपी से सीखा है। जब बीजेपी देश में 38 दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो हम 2 दलों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते।
चर्चा होगी कर्नाटक की राजनीति की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कीर्ति दुबे से। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक डूबता जहाज है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इससे किनारा कर लिया है। बसपा प्रमुख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश को अब चाय वाला या चौकीदार नहीं, एक प्रधानमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा कि देश पहले ही सेवक, मुख्य सेवक, चाय वाला और चौकीदार देख चुका है, जो लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। देश को अब पूर्ण प्रधानमंत्री चाहिए, जो संविधान की भावना के मुताबिक देश चला सके। उत्तर प्रदेश के बलिया की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा। मोदी ने मायावती और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जाति का सहारा लेने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि उनकी जाति पूछी जा रही है। उन्होंने कहा कि मायावती और अखिलेश दोनों मिलकर जितने साल मुख्यमंत्री नहीं रहे, उससे कहीं ज़्यादा समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव में कभी जाति का सहारा नहीं लिया। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत रूस के सोची में हो रही है। बातचीत के पहले लावरोव ने कहा कि रिश्ते सुधारने के लिए काम करने का एक रचनात्मक तरीका जरूरी है। पोम्पियो ने कहा कि दोनों पक्षों का हर मसले पर असहमत होना जरूरी नहीं है। दोनों नेता आपसी संबंधों के अलावा ईरान, सीरिया संकट, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत को लेकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ कुछ संदेह है, लेकिन स्थिति को बदलने का ये तरीका नहीं है। अविश्वास की वजह से आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा दोनों की ही राहों में रुकावटें दिखती हैं। ऐसे इसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ कि ऐसा वक्त है जब हमें अपने रिश्ते के लिए एक नया और ज़्यादा रचनात्मक तरीका तलाशने की ज़रूरत है। अगर अमेरिका इसके लिए तैयार है, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। ये थे रूस के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके तेल के 2 पंपिंग स्टेशनों को विस्फोटक से लैस ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। इसके पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब के संयंत्रों पर ड्रोन का हमला किया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ड्रोन से पूर्व पश्चिम पाइपलाइन पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि नुकसान की जांच की जा रही है। इस हमले की वजह से पाइपलाइन से सप्लाई बंद कर दी गई है। सऊदी अरब ने इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया है। इसके एक दिन पहले सऊदी अरब ने कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात के तट पर उसके 2 तेल के टैंकरों को निशाना बनाया गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई झड़प में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारी सेना मुख्यालय के सामने धरना दे रहे थे। वो नागरिक सरकार की मांग उठा रहे थे। घायल हुए प्रदर्शनकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से कुछ ने बताया कि आखिर वो कैसे घायल हुए। फॉरेस ओथाम नाम के व्यक्ति बता रहे हैं कि मुझे निशाना बनाया गया, मेरे जिस्म पर 2 घाव हैं, उनका प्रहार बेकार गया क्योंकि मैं अब भी जिंदा हूँ। मुबारक नाम के एक और शख्स कह रहे हैं कि उन पर गोली चलाई गई। हमलावर मुझसे 20 मीटर दूर था, उसने मुझे देखा और गोली चला दी। ये जानबूझकर किया गया, वो मुझे मारना चाहते थे। ये थे घायल हुए लोगों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने 1 अरब से ज़्यादा यूजर्स को सलाह दी है कि वो ऐप का लेटेस्ट वर्जन यानी कि सबसे ताज़ा अपडेट अपने ऐप का कर लें। व्हाट्सएप का कहना है कि ये सलाह इस आशंका में दी गई है कि यूजर्स के कॉल की निगरानी हो सकती है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में न लौटने संबंधी बीएसपी नेता मायावती के बयान पर एक ओर अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो दूसरी ओर नतीजों के आने से पहले ही प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान जैसी खबरें भी शुरू हो गई हैं। मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि विपक्षी नेता प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, तो वहीं एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी मायावती के बयान से सहमति जता रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीरात्मक मिश्र की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव अब आखिरी चरण में है, इसलिए अब चुनाव प्रचार के साथ ही चुनाव के बाद की परिस्थितियों के आकलन भी शुरू हो गए हैं। बीएसपी नेता मायावती के ताजा बयान को कुछ इसी तरह लिया जा रहा है। मायावती ने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि बीजेपी सत्ता में अब दोबारा नहीं लौटने वाली है और नरेंद्र मोदी के तो दोबारा पीएम बनने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है।
पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, ये सब लोग जानते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है, और वह इनकी घोर चुनावी वायदा खिलाफी के कारण भारी जन विरोध को देखते हुए अब इनके स्वयं सेवक झोला लेकर चुनाव में हमें कहीं भी मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे श्री मोदी के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अब देश को संविधान की सही कल्याणकारी मंशा के हिसाब से चलाने वाला शुद्ध पीएम चाहिए।
लेकिन मायावती के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तल्ख प्रतिक्रियाएं दी हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिसकी नैया खुद डूबी हो उसे दूसरे की नैया कैसे दिख रही है, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि दिन में सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है।
हर नेता को दिन में सपने देखने पर पाबंदी नहीं है, जो देश की हवा है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, 23 के नतीजे ऐतिहासिक होंगे और भाजपा को स्वयं प्रचंड बहुमत मिलेगा।
इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलुगु देशम पार्टी नेता चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी चुनाव बाद तीसरे मोर्चे की संभावना पर चर्चाएं हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे पर चुनावी नतीजों के बाद ही चर्चा करने पर जोर दे रहे हैं। बहरहाल बीजेपी के नेता एनडीए की सत्ता में वापसी और नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने को लेकर भले ही आश्वस्त दिख रहे हों, लेकिन एनडीए के भीतर भी इस पर आशंकाएं जारी हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं,
बहुमत देश में किसी को मिल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सामान्य वर्ग हो गया, बैकवर्ड भी हो गया, अब शेड्यूल कास्ट का नंबर है, अनुसूचित जात जनजाति का ही बेटा इस बार प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें मायावती जी भी बन सकती हैं और चेहरे भी कोई नए आ सकते हैं, अब इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
वहीं सियासी गलियारों में मायावती के इस बयान को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने से ये कहकर बच रहे हैं कि ये उनका निजी मामला है। वहीं जानकारों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया के बीच ऐसे बयान की कोई जरूरत नहीं थी। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
देखिए मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र के लिए कम और बयानों के लिए ज्यादा याद किया जाएगा, और बयान का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब बयान में पतन की पराकाष्ठा है। अब वो कह रही है कि आरएसएस के लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनके पास सूचना तंत्र क्या है, तो ये सिर्फ बयान देकर के लाइन लाइट में आने और कुछ भी बोलने का शौक है, शगल है, जिसको इस चुनाव में नेता पूरा कर रहे हैं, और ये चुनाव अपने बयानबाजी के लिए भारतीय लोकतंत्र में याद किया जाएगा।
बहरहाल अभी सातवें और अंतिम चरण के चुनाव बाकी हैं और नतीजे 23 मई को आएंगे। जाहिर है उसी दिन ये तय होगा कि नई सरकार किन दलों की और किसके नेतृत्व में बनने वाली है। लेकिन इस बीच नेताओं की पीएम बनने की इच्छाएं भी खुलकर सामने आएंगी और सरकार बनने को लेकर कयासबाजी भी जारी रहेगी। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने गठबंधन के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव अखिलेश यादव से मिले और उनके गठबंधन कांग्रेस के साथ उनके भावी संबंधों और अन्य कई विषयों पर लंबी बातचीत की। उन्होंने उनसे पूछा कि आप 2014 और 2017 के बाद तीसरा लगातार बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली दो हारों से आपने क्या सबक हासिल किया है?
देखिए 2014 का चुनाव देखें हम और फिर 2017 का देखें, लगभग लोगों ने उसी तरह मतदान किया है जिस तरीके से 2014 में किया था। लोग ये सोचते थे जो नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, अच्छे दिन के, नौकरी और रोज़गार मिल जाने के, साथ ही साथ कुछ बड़ा बदलाव करने का, और अपने घोषणा पत्र पे जनता को ही लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अमल करेगी। लेकिन 5 साल गुजार दिए, इस दौरान नोटबंदी, जब पिछला चुनाव था 2017 का, तो नोटबंदी नई नई हुई थी, लोग उसका असर नहीं समझ पा रहे थे। इस भ्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया। समाजवादी पार्टी का काम बहुत था, उपलब्धियां लोगों को आज भी याद हैं। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, पुलिस के लिए स्ट्रक्चरल चेंज किया 100 से, एक्सप्रेस वे उस समय ज़्यादा लोग नहीं चले थे अब चलने लगे हैं, मेट्रो में लोग नहीं चले थे अब चल रहे हैं, बिजली का जनरेशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया था, समाजवादी पेंशन वो बड़े लोगों को मिली थी।
जिस तरह से बीजेपी ने एक तरह से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाई, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार वो बात जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही थी?
भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग अच्छी की थी, लोगों को बहका दिया था, अपना दल उनके साथ था, ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ थे, तो उन्हें लोगों को एक गठबंधन दिया उन्होंने और अपना वोट बढ़ाया। लेकिन जब काम की बात आई तो काम जमीन पर नहीं उतार पाए, इसलिए जनता बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से।
मैं अपनी बात अगर आपको करूं तो मैं यहीं का हूं, यहीं का पला बढ़ा हूं, और हमने बचपन में स्कूल कॉलेज में बढ़ते हुए जो पॉलिटिक्स देखी थी यहां पर, वो समाजवादी पार्टी का राइज देखा था एक तरफ, और बीएसपी का राइज देखा था, और फिनोमिनल राइज था। और उसमें हमने उस तरह की चीज़ें भी देखी जिसमें गेस्ट हाउस कांड हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, आपसी में रंजिश। तो क्या मेरे ऐसे इंसान के लिए ये कैसे कन्विंस करेंगे आप कि ये नेचुरल अलायंस है?
ये नेचुरल अलायंस इसलिए है कि जब बाई इलेक्शंस हुए तो दोनों ने एक साथ काम किया, और ये कोई गठबंधन आज का नहीं है। कभी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया मिलकर के काम करना चाहते थे, उस समय ने उन्हें मौका नहीं दिया, इसलिए वो साथ नहीं हो पाए। फिर एक बार माननीय काशीराम जी और नेताजी मिलकर के काम किए, वो भी बहुत दिन नहीं चला क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। मैं समझता हूं ये जो गठबंधन अब बना है, ये केवल दो दलों का गठबंधन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की है कि ये विचारों का भी संगम बने।
वो कहते हैं आप दोनों सरकार में आ जाएंगे, आप दोनों अगर जीत गए तो यहाँ जातिवाद बढ़ेगा, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा, राष्ट्रहित को खतरा है अगर आप और मायावती साथ में आते हैं तो।
अभी तक जितने भी चुनाव मैंने लड़े हैं, मैंने कभी अपना जाति नहीं बताई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पिछड़ा हूँ इसलिए मेरी मदद की जाए। लेकिन ये देश के इकलौते प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कई बार कहा कि वो पिछड़े हैं, नीच जाति से आते हैं और उनकी मदद होनी चाहिए। तो कभी भी समाजवादी पार्टी और मैंने जात और धर्म के आधार पर वोट कभी नहीं मांगा।
तो जो आरोप लगते रहे कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो एक विशेष समुदाय, यादव समुदाय वगैरह की सरकार होती है और उन्हीं के लोग जो है वो पनपते हैं,
हम तो आज जानना चाहते हैं, अगर कल हमसे सवाल उठे थे, हम पर सवाल उठे थे, आज हम जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग हर कुर्सी पर बैठे थे वो लोग कहाँ हैं, या आज कुर्सी पर कौन बैठा है। मुझे पूरे प्रदेश में बता दें कि एक यादव जाति का DM बना हो, मुझे पूरे प्रदेश में ये बता दें कि अगर यादव जाति का एक SP भी बना हो, तो ये कहना कि केवल हम ही जातिवादी हैं।
आपकी सरकार थी तो होता था ऐसा?
हम ये जानना चाहेंगे उन लोगों से, और मैंने कई बार कहा, यहाँ के गवर्नर साहब ने जब इस बात को कहा कि यहाँ जाति के आधार पर पोस्टिंग होती है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो मैंने उनसे जानना चाहा कि कम से कम हमें वो सूची उपलब्ध करा दो कि कितने हमारे DM हैं, कितने IPS हैं। इसलिए ये आरोप केवल लगता था।
10-15 साल पहले क्या आपने कभी कल्पना की थी कि कन्नौज में एक रैली होगी और आपकी पत्नी डिम्पल जी मायावती जी का आशीर्वाद लेंगी? क्या कंपल्शंस क्या थे?
कोई कंपल्शन नहीं है, बीजेपी से सीखा है। जब बीजेपी देश में 38 दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो हम दो दलों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। अभी तो हम पे गुंजाइश बहुत है और सरकार बनाते बनाते न जाने कितने और करने पड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कम गठबंधन होगा।
कांग्रेस को जोड़ने की गुंजाइश है क्या अभी भी?
ये अभी नहीं, लेकिन ये गठबंधन मिलकर के 23 तारीख को जब पड़ाव आ जाएगा तो फैसला लेगा।
आप थोड़ा रिकनसाइल्ड रहते हैं स्टेट लीडरशिप को लेकर, लोग कहते हैं कि आप आपके अंदर भी प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस होने चाहिए, दिखते नहीं है, क्यों ऐसा, क्यों आप स्टेट पे फोकस क्यों करते हैं ज्यादा?
देखिए, देश का प्रधानमंत्री नया बने ये मैं चाहता हूँ, और देश के किसी कोने से बन सकता है, लेकिन यूपी से बने तो और अच्छी बात होगी,
आपकी भी दावेदारी हो सकती है।
अभी हमारा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि हम दिल्ली में जाएं और उस पोजीशन के लिए हम अपना पक्ष रखें।
फर्ज कीजिए कि एक ऐसा कोएलिशन बनता है जिसमें समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा सीट्स होती हैं, एक ऐसा कोएलिशन होता है और आपको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाते हैं, तो आप कितना सोचेंगे या तुरंत एक्सेप्ट करेंगे?
मैं इस रेस में नहीं हूँ, और देश का प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा है, अनुभव जिसके पास हो वो अगर पहुंचे तो अच्छी
बात। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े इंपॉर्टेंट,
लेकिन अभी मेरा वो इतना बड़ा सपना नहीं है, मैं उतना ही बड़ा सपना देख सकता हूं जितना पूरा कर सकूं।
मायावती जी के बयान क्या आपके गठबंधन को, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे?
मैं समझता हूं उनका बयान बिल्कुल गठबंधन को नुकसान नहीं करेगा, उन्होंने कम से कम ये बताया कि प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति के नहीं है।
ले देखिए, इलेक्शन स्पीचेस जात पे आ रही है, जाति पर हो रही है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे महागठबंधन की हो, स्पेसिफिक वोटर्स की बात हो रही है, तो क्या फिर से मुद्दे जाति पर आ रहे हैं, धर्म पर आ रहे हैं? कोई राष्ट्रहित की बात करता है, कोई जात की बात करता है?
मैं तो चाहता हूं कि जाति पर और धर्म पर बात ना हो, इसीलिए पिछला चुनाव मेरा काम बोलता पे था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा जाति और धर्म पर वोट मांगा था।
23 तारीख के बाद जब आंकड़े आने शुरू हो रहे होंगे, 4-5 बजे आप, अगर आंकड़े आपके बेहतर आते हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो आप, जाहिर है मायावती जी के साथ आपका महागठबंधन है, अजीत जी हैं, और किन किन लोगों के साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे?
अभी किसी से बातचीत नहीं हुई है, 23 तारीख के परिणाम आ जाने के बाद आदरणीय मायावती जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, हम तीनों लीडर्स बैठेंगे, अपनी पार्टी में राय मशवरा करेंगे, सीनियर लीडरशिप से पूछेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे।
अखिलेश यादव से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के लिए कुल 14 सीटों पर चुनाव होना है, वहां चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव चुनावी हवा का जायजा लेने पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले जब वो बनारस में घुस रहे थे, मैंने उनसे संपर्क किया और पूछा कि किस तरह का चुनावी माहौल है वहां।
रेहान साहब, अब चुनाव का एक तरह से आखिरी पड़ाव आ गया है, बहुत लंबा चुनाव था ये, और 7वें चरण का जो मतदान है वो 19 मई को होना है। ज्यादातर जो बड़ी सीटें हैं वो इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है, और लिहाजा जितने बड़े टॉप कैंपेनर्स हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी की मायावती हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के रहो, वो सब लोग एक तरह से यहाँ रोजाना रैलियां कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, और उनको सबको ये लग रहा है कि ये बड़ा निर्णायक सा फेज हो सकता है। इसमें गौरतलब ये भी है, 14 पार्टी ने इस पूरे इलाके में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार शायद महागठबंधन और कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण लगता है कि दिख रही है उनके मुताबिक, क्योंकि जैसे कुशीनगर में सीट पर काफी ध्यान है, उसके अलावा जो चंदौली की सीट है उसमें बहुत ध्यान है, गाजीपुर में बहुत ध्यान है, मनोज सिन्हा वहां से यूनियन कौंसिल लड़ रहे हैं चुनाव, जाहिर है बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है और वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बलिया में एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, तो काफी ज्यादा प्रचार तेज है, चरम पर आ रहा है, और इसको देखते हुए अगले कुछ दिनों में जो राजनीतिक स्वर है वो बहुत ज्यादा तेज और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी।
नितिन, ये बताइए, कल जब आप मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत दिलचस्प टिप्पणी की थी कि ये जो चुनाव है ये अर्थमेटिक नहीं है, गणित नहीं है कि 2 और 2 जोड़कर 4, ये एक रसायन शास्त्र है जहां 2 अलग अलग चीजें मिलकर एक नई चीज को जन्म देते हैं। आप इसको धरातल पर देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, मनोज सिन्हा जो कह रहे हैं वो उनकी बात उनके स्तर से और उनके लिहाज से एकदम सही है। वो ये कहना चाहते हैं और उन्होंने जो मुझे बताया वो ये था कि वो उस इलाके में, वो अपने इलाके में विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि पहले, इसके पहले उनको जब मौके मिले सांसद रहने के तो वो विकास नहीं कर पाए, वो अपने इलाके में विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे पूरी उत्तर प्रदेश जो दरअसल मेन बातें कर रही है वो राष्ट्रहित की है, वो ये ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे निर्णायक कार्रवाई की है बकौल उनके, और इस तरह की बातें कर रही है, देश की सुरक्षा की बात कर रही है। लेकिन मनोज सिन्हा ने जो केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र की बात की, वैसा ही कुछ एग्जाम्पल मुझे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से बातचीत करने में मिला। उन्होंने भी कहा कि ये एक तरह की केमिस्ट्री है और इसी के चलते समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ है और उसका जो जो सोल्यूशन बन के निकला है वो महागठबंधन है।
ये थे पूर्वी उत्तर प्रदेश से नितिन श्रीवास्तव। उधर पश्चिम बंगाल में भी आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा। उस दिन राज्य की 42 सीटों में से आखिरी 9 सीटों पर चुनाव होगा। सभी पार्टियां रैली और रोड शो करने में जुटी हुई हैं। हमारे साथी जुबैर अहमद तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैलियों में गए, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी।
अली गली में शोर है, अली गली में शोर है, ये चौकीदार देशमलव है।
2019 के आम चुनाव का आखिरी दौर, दांव पर लगी 9 सीटों के लिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं। अपनी हर रैली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करती हैं। चुनावी रैलियों में आए समर्थकों पर इसका असर है।
यहाँ पे तो हवा बोल कहने का बोल जाए तो टीएमसी का ही चल रहा है।
ममता बनर्जी तो बेहतरीन से बेहतरीन औरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो किस तरीका से है, किस तरीके, मेरे लिए यहाँ के आवाम के लिए बहुत बेहतरीन।
मिमी चक्रवर्ती उन्होंने तो फिल्म स्टार है, अभी फिर भी तृणमूल को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा ये उम्मीद करते हैं।
समर्थक और वोटर कहते हैं वो उम्मीदवारों को देखकर नहीं ममता बनर्जी के नाम पर वोट डालेंगे।
ममता देखे देखे ही वोट देवो।
कैंडिडेट बंदा का दखल नहीं
ना।
राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुख्यमंत्री के मोदी के खिलाफ आक्रामक रुख से जाहिर होता है कि टीएमसी को असल चुनौती कांग्रेस या वामपंथी मोर्चे से नहीं बल्कि भाजपा से मिल रही है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सव्यसाची बासु चौधरी कहते हैं कि बीजेपी का उठान हो रहा है। अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, वो सभी सीटों से कांग्रेस और लेफ्ट को हटा सकती। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने की पूरी कोशिश की है, शायद इसे कुछ सफलता भी मिले। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के राज्य भर में फैले कार्यकर्ताओं के जाल का मुकाबला फिलहाल कोई पार्टी करती दिखाई नहीं देती। जुबैर अहमद, BBC कोलकाता।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अब जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आने में सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल एस के नेताओं में तू तू मैं बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये एक तरह से चुनाव के बाद होने वाली लड़ाई की तैयारी है। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि इससे गठबंधन सरकार खतरे में भी आ सकती है। बंगलौर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
देश में शायद ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं होगा जहां 23 मई के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर इतना तनाव हो। दोनों कांग्रेस और जेडीएस के नेता चुनाव के अभियान के दौरान बयान देते रहे और जमीनी स्तर पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत कम सहयोग दिखने को मिला। सहयोग की कमी खासकर मंड्या और मैसूर जैसे क्षेत्रों में साफ तौर से दिखने को मिली थी। लेकिन चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थकों ने फिर से वही कहना शुरू कर दिया कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सवाल पर सिद्धरामैया ने कहा, मैंने तो स्पष्ट कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री तभी बनूंगा जब वहां जगह खाली हो, और हमारे समर्थकों ने यह भी कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसमें क्या खराबी है? आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मैं फिर से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अगर कोई ये बात लगातार कह रहा है तो मैं क्या उनके मुंह पर ताला लगा सकता हूं? ये थे सिद्धरामैया के शब्द। लेकिन दूसरी ओर राज्य जेडीएस के अध्यक्ष AH विश्वनाथ ने सिद्धरामैया पर सीधा निशाना साधा और कहा कि सिद्धरामैया ने समन्वय समिति के अध्यक्ष होने के नाते अपना काम नहीं किया है। विश्वनाथ का मानना है, समन्वय समिति के अध्यक्ष सिद्धरामैया जी हैं और आज तक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनको गठबंधन सरकार को सही रास्ता दिखाना था। हमारी गुजारिश इतनी है कि वो सरकार के अच्छा कामकाज करने की राय मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को दें। ये थे AH विश्वनाथ के शब्द। राजनीतिक हलकों में ये बात सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस JDS गठबंधन को राज्य के 28 लोकसभा क्षेत्रों में 50% सीटें मिली तो सरकार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 14 से भी कम मिली तो दोनों के बीच रिश्ते और ख़राब हो सकते हैं। इन दोनों पक्षों में ये भी चर्चा है कि अगर कांग्रेस कुंदगोल और चिंचोली उप विधानसभा चुनाव हारी तो BJP के ऑपरेशन कमला की शुरुआत हो सकती है, खासकर अगर केंद्र में BJP की सरकार बनी तो एक गति मात्र दे सकती है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कर्नाटक में सत्ताधारी गठबंधन में मुश्किलों की खबरें।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब नजर दौड़ाते हैं आज के खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब ब्राइटन एंड होव एल्बियन ने मैनचेस्टर सिटी के हाथों हारने के बाद अपने कोच क्रिस हॉटन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। ब्राइटन को रविवार MX स्टेडियम में खेले गए निर्णायक मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी के हाथों 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। सिटी ने इस जीत के साथ ही लगातार दूसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। ब्राइटन क्लब के चेयरमैन टॉमी ब्लूम ने हॉटन को उनके पद से हटाने की घोषणा की है। वहीं अब बात भारतीय फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल में पिछले गुरुवार को एक सनसनीखेज रिकॉर्ड बना। लुधियाना में खेले जा रहे इंडियन वुमेन लीग में गोकुलम केरल FC की अंजू तमांग 14वें सेकंड में गोल कर सबसे तेज गोल करने वाली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। वैसे इससे पूर्व भारतीय फुटबॉल में सबसे जल्द गोल करने का रिकॉर्ड पुणे FC के जेम्स मोगा के नाम है। 2012 में आई लीग फुटबॉल के दौरान यूनाइटेड सिक्किम के खिलाफ मोगा ने 10वें सेकंड में ही गोल कर सनसनी फैला दी थी। और अब जाने से पहले बात टेनिस की। सर्बिया के नोवाक जोकोविच टेनिस पेशेवर संघ यानी कि ATP की ताजा रैंकिंग में मजबूती के साथ शीर्ष स्थान पर कायम है। उन्होंने कल ही एक दिन पहले मैड्रिड ओपन का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया। जोकोविच 115 अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। खेल समाचारों में आज इतना ही।
ज्योतिका सिंह सुना रही थी खेल समाचार। और सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक डूबता जहाज है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इससे किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश पहले ही सेवक, प्रमुख सेवक, चायवाला और चौकीदार देख चुका है जो लोगों को गुमराह करने में लगा है। देश को अब पूर्ण प्रधानमंत्री चाहिए जो संविधान की भावना के मुताबिक देश चला सके। उत्तर प्रदेश के बलिया की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती और अखिलेश दोनों मिलकर जितने साल मुख्यमंत्री नहीं रहे उससे कहीं ज्यादा समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। मोदी ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव में कभी जाति का इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत रूस के सोची में चल रही है। बातचीत के पहले लावरोव ने कहा कि रिश्ते सुधारने के लिए काम करने के लिए एक नया रचनात्मक तरीका ढूंढना पड़ेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके तेल के 2 पंपिंग स्टेशनों को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया है। इसके पहले यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब के संयंत्रों पर ड्रोन से हमला किया है। आप सुन रहे थे BBC समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।